नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन के इस संस्करण में आप सभी का स्वागत है और आज मैं हूं आपके साथ विनय सक्सेना। और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ मलय नीरव जी। मलय जी, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है, नमस्कार।
नमस्कार, धन्यवाद।
सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच पर भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के डी कुकेश कल से सिंगापुर में शुरू हो रही विश्व चैंपियनशिप में अपने पहले मैच में मौजूदा चैंपियन चीन के डिंग लीरेन से खेलेंगे। जूनियर हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 26 नवंबर से ओमान के मस्कट में शुरू होगा और भारत के एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक बोलपल्ली की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर टूर में पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। सबसे पहले बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे क्रिकेट टेस्ट मैच की। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच पर भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। यशस्वी जायसवाल के 161 रन और विराट कोहली के नॉट आउट 100 रन से भारत ने आज यहां पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन चायकाल के बाद अपनी दूसरी पारी 6 विकेट पर 487 रन पर घोषित कर दी और मेजबान टीम के सामने 534 रन का लक्ष्य रख दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के 534 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में 3 विकेट पर 12 रन बना लिए हैं। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
आज भारत ने अपने कल के स्कोर बिना कोई विकेट खोए 172 रन से आगे खेलना शुरू किया। यशस्वी जायसवाल ने अपने कल के 90 रन के स्कोर से आगे खेलते हुए 297 गेंदों पर 15 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 161 रन की मैराथन पारी खेली। कल के दूसरे नॉट आउट बल्लेबाज केएल राहुल ने 77 रन बनाए। उधर विराट कोहली ने मानस लाबुशेन की गेंद पर स्वीप से चौका लगाकर जैसे ही अपना शतक पूरा किया, कप्तान जसप्रीत बुमराह ने पारी घोषित कर दी। विराट ने 143 गेंदों की अपनी शतकीय पारी में 8 चौके और 2 छक्के लगाए, जबकि दूसरे छोर पर नीतीश कुमार रेड्डी 27 गेंदों में 38 रन बनाकर नॉट आउट पवेलियन लौटे। विराट ने इस शतक के साथ ही विदेश में सर्वाधिक 7 शतक बनाने के सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। उन्होंने इसके अलावा एक देश के खिलाफ 9 शतक बनाने के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। विराट कोहली का यह 30वां शतक है और वे ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रैडमैन के 29 शतकों से आगे निकल गए हैं। भारत ने 18 गेंदों के अंतराल में 8 रन पर 3 विकेट गंवा दिए, लेकिन विराट ने वॉशिंगटन सुंदर के साथ 6 विकेट के लिए 89 रन और नीतीश कुमार रेड्डी के साथ 7 विकेट के लिए 77 रन की साझेदारी कर भारत की कुल बढ़त को 500 के पार पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया को अब जीत के लिए 522 रन और भारत को 7 विकेट की दरकार है। मुदिता, स्पोर्ट्स कैन।
मलय जी, लक्ष्य दोनों टीमों के सामने स्पष्ट है, भारत को 7 विकेट और ऑस्ट्रेलिया को 534 रन।
ऑस्ट्रेलिया दबाव में है, भारत का पलड़ा भारी है, इस बात में कोई शक नहीं। और जिस तरह से आज भारत के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की और खासकर विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने, और उसके बाद जिस तरह से बुमराह ने और सिराज ने गेंदबाजी की और 3 विकेट चटका दिए ऑस्ट्रेलिया के, और अंतिम समय में यहां तक कि नाइट वॉचमैन को भी वापस जाना पड़ा, तो मुझे सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि अब तो ऑस्ट्रेलिया अगले टेस्ट मैच की तैयारी के बारे में सोच रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया एक तरह से ये मानकर चल रहा होगा कि ये टेस्ट तो हाथ से गया,
तो अगले टेस्ट मैच में हमें सचेत रहना पड़ेगा।
देखिए, सचेत तो हमेशा रहना पड़ेगा। भारत ने जिस तरह से शुरुआत की थी, खराब शुरुआत थी, 150 रन पर भारत की पारी से मट गई थी। लग रहा था कि भारतीय टेस्ट टीम जो है अभी तक जो टेस्ट की विधा है उसमें दोबारा पांव जमाने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं।
यूं कहें कि न्यूजीलैंड के सदमे से उबर नहीं पाए थे।
नहीं, बहुत समय से जब आप एक दिवसीय क्रिकेट या 2020 क्रिकेट खेलते रहते हैं तो टेस्ट क्रिकेट के ग्रुप में नहीं जा पाते। वही हाल ऑस्ट्रेलिया का है, पिछले 8 महीनों से उन्होंने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है और अब जब टेस्ट मैच की तैयारी करके वो उतरे हैं मैदान में तो उनको तरह तरह की मुश्किलें आ रही हैं। वो ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करने वाली टीम में ऑस्ट्रेलिया का नाम कभी नहीं होता, जो प्रयोग करे मैदान पर जाकर के। अच्छा, एक बॉलर, एक बैट्समैन है, उसे 2 बॉल करवा लेते, 2 ओवर करवा लेते, इस तरह की चीजें वो नहीं करते। वो बड़े ही सेट प्लानिंग के साथ सोच समझ कर नपे तुले अंदाज में मैदान पर उतरते हैं और यहां देखा कि हड़बड़ाहट सी स्थिति, कुछ असमंजस की स्थिति और कुछ अजीबो गरीब तरह के खेल का प्रदर्शन। तो इससे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया अभी से ही ये सोच रही होगी कि ये 5 टेस्ट मैचों की जो श्रृंखला है अपने पांव मजबूत करने के लिए और टेस्ट मैच में दोबारा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उनके पास एक मौका है कि अभी से लेकर और अगले चार जो बचे हैं टेस्ट मैच, उसमें अपने खिलाड़ियों को और थोड़ा तराशे, एक नए अंदाज में, टेस्ट मैच के अंदाज में क्रिकेट खेले
जी। अब बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल 2025 के लिए मेगा नीलामी की शुरुआत धमाकेदार हुई है, जहां भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत लीग के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। एक रिपोर्ट।
ऋषभ पंत को इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 27 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बोली के साथ अपनी टीम में शामिल कर लिया है। इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26 करोड़ 75 लाख रुपए की कीमत में अपनी टीम में शामिल किया। इससे पहले आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी मिशेल स्टार्क अब दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते नजर आएंगे। स्टार्क को 11 करोड़ 75 लाख रुपए में लिया गया है। इसके अलावा T20 क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी से खास नाम कमाने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को पंजाब किंग्स ने आरटीएम का इस्तेमाल करते हुए 18 करोड़ रुपए में खरीद लिया। जोश बटलर को भी गुजरात टाइटंस ने 15 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है। तेज गेंदबाज कैगिजो रबाडा को 10 करोड़ 75 लाख रुपए में गुजरात टाइटंस ने खरीदा। रबाडा के अलावा इस टीम में शुभमन गिल, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया जैसे खिलाड़ी कोर ग्रुप का हिस्सा है। इस तरह से आईपीएल 2025 मेगा नीलामी का पहला सेट धमाकेदार रहा, जहां दो बार सबसे महंगे खिलाड़ी का रिकॉर्ड टूट गया। इस सेट में अर्शदीप सिंह और श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स, कगिसो रबाडा और जोस बटलर को गुजरात टाइटंस, मिशेल स्टार्क को दिल्ली कैपिटल्स और ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने लिया। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
मलिक जी, खूब पैसे बरस रहे हैं।
पैसे बरस रहे हैं, खिलाड़ी इधर से उधर जा रहे हैं। ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के अलावा अगर आप देखें वेंकटेश अय्यर के बारे में भी बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर कि 23 करोड़ 75 लाख में बिके, जबकि पिछले दिनों उनको चोट लगी थी, उनके टखने में चोट लगी थी, वो गिर गए थे होटल के सीढ़ियों से और कुछ दिनों तक नहीं खेल पाए थे। अब फिर से तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो बहुत स्पष्ट है कि जो ऑलराउंडर है वो सबसे ज्यादा महंगा बिकेगा, और जो बैटिंग के साथ साथ विकेट कीपिंग कर रहा है, अब देखिए निकोलस पुगरन को 20 से ऊपर मिले। तो इस तरह से ये जो बात है जो हमेशा से कही जाती रही है कि 2020 मैच में वो खिलाड़ी सबसे महत्वपूर्ण होता है जो सिर्फ बल्लेबाजी न करे या गेंदबाजी न करे, जरूरत पड़ने पे विकेट कीपिंग भी करे या बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी करे।
अब बात करेंगे शतरंज की। भारत के डी कुकेश कल से सिंगापुर में शुरू हो रही विश्व चैंपियनशिप में अपने पहले मैच में मौजूदा चैंपियन चीन के डिंग लिरेन से खेलेंगे। उनका लक्ष्य विश्वनाथन आनंद के बाद यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाला पहला भारतीय बनना होगा। अब यह देखना होगा कि 15 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के दौरान बड़े अवसर के दबाव से वो कैसे निपटते हैं। शनिवार को उद्घाटन समारोह के दौरान कार्ड निकालकर इसका फैसला किया गया, जिसमें खिलाड़ियों से कार्ड चुनने के लिए कहा गया। विश्व खिताब का मुकाबला सर्वश्रेष्ठ 14 गेम प्रारूप में खेला जाएगा, जिसमें 7.5 अंक बनाने वाले को विश्व शतरंज के बादशाह के खिताब से नवाजा जाएगा। यदि 7-7 से बराबरी पर मुकाबले रहते हैं या अंक रहते हैं तो कम समय नियंत्रण वाले टाई ब्रेकर विजेता का फैसला करेंगे। क्या स्थिति देखते हैं भारतीय खिलाड़ियों की?
देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है 2024, ये अपने आप में एक अनोखी चीज हो रही है कि 130 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि दो एशियाई देशों के खिलाड़ी फाइनल में आमने सामने हैं, चीन और भारत का खिलाड़ी। दूसरी बात कि 18 वर्ष का एक खिलाड़ी एक ऐसे विश्व चैंपियन को चैलेंज करने जा रहा है जो कहता है कि मैं नर्वस हूं, मैं घबराता हूं और घबराया हुआ है, और घबराए तो वेंकटेश भी हुए हैं, हालांकि वो शुरू में सफेद मोहरों के साथ उतरेंगे, और लेकिन उनका ये कहना है कि मेरा फोकस पूरा है। उन्होंने जो आज प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, दोनों खिलाड़ियों की बातों को अगर आपने सुना हो तो दोनों ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि घबराहट नहीं है, मगर घबराहट तो होती है जब विश्व चैंपियनशिप में आप दोनों आमने सामने हो, पूरी दुनिया की नजर आपके सामने हो, और एक यहां पर हल्का फायदा डिंग लिरेन को मिल सकता है जो उन्होंने खुद कहा कि यहां तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं चीन से बाहर हूं, क्योंकि यहां के ज्यादातर लोग चीनी भाषा में बात कर रहे हैं, मुझे लोगों ने उपहार दिया, मेरा बहुत अच्छा अभिनंदन हो रहा है, अभिवादन हो रहा है। लेकिन ये बात तो भारत के खिलाड़ी पर भी लागू होती है। सिंगापुर में आप जानते हैं कि बहुत भारतीय मूल के लोग हैं और वो सब देखेंगे, तो ये एक ऐसी चैंपियनशिप के लिए मुकाबला हो रहा है जिसमें दोनों देशों के जो समर्थक हैं वो चाहेंगे कि भारत का झंडा लहराए, और गुकेश अगर जीत जाते हैं विश्वनाथन आनंद के बाद, ये पहली बार होगा कि एक विश्व चैंपियनशिप जीतेगा एक ऐसा बच्चा जो अभी 18 वर्षों का है। तो चेस में जो एक नई सांस भारत में देखने को मिली है, जो चेस में बचपन से लेकर 3-3 साल के बच्चे ग्रैंड मास्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी बात होने वाली है। ये जो विश्व चैंपियनशिप हार जीत तो होती रहती है, आप विश्व चैंपियन ना भी बने, फर्ज कीजिए, भगवान न करे ऐसा हो कि आप ना बने, लेकिन जो आपने एक अपना झंडा गाड़ा है शतरंज के मंच पर, जो विश्व के पटल पर भारत के खिलाड़ियों ने अभी जो करके दिखाया है, मेरे ख्याल से ये अपने आप में नायाब है।
जूनियर हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 26 नवंबर से ओमान के मस्कट में शुरू होगा। मौजूदा चैंपियन भारत आमिर अली की कप्तानी में टूर्नामेंट में खेलेगी। पिछले वर्ष फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर चौथी बार खिताब जीता था। इस वर्ष टूर्नामेंट में 10 टीमों को दो पूल में बांटा गया है। पूल ए में भारतीय टीम के साथ कोरिया, जापान, चीनी ताइपे और थाईलैंड की टीम है, जबकि पूल बी में पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश, ओमान और चीन की टीम शामिल है। भारतीय टीम 27 नवंबर को थाईलैंड के साथ पहला मुकाबला खेलेगी। भारत 28 नवंबर को जापान, 30 नवंबर को चीनी ताइपे और 1 दिसंबर को कोरिया के साथ मैच खेलेगा। मले जी, नई प्रतिभाएं उभर के आएंगी हॉकी में?
ऑलरेडी आ चुकी हैं, और हॉकी में भी वही हो रहा है जो बैडमिंटन में हुआ, टेनिस में हुआ, चेस में हुआ, जिसकी हम बात करते हैं। उदीयमान सितारों से जगमगा रहा है आकाश, और हर सितारा एक दूसरे को की रोशनी को पार करने में लगा हुआ है। अगर आप देखें तो जिस प्रकार से भारतीय टीम अभी तक खेल रही है, जूनियर हॉकी टीम, और जिस तरह से उनका मुकाबला होने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि जो ये पूरा फॉर्मेट है वो उसमें भारत के लिए बहुत चांसेस हैं। और एक जो पूल है पूरा खिलाड़ियों का जो तैयार हो रहा है, जिसमें जूनियर खिलाड़ी होंगे, उनमें से जो रिटायर होने वाले खिलाड़ी हैं, जो अब जिनके खेल जीवन की सांध वेला आने वाली है, उनको जो रिप्लेस करने के लिए एक पूरी की पूरी श्रृंखला खड़ी है वहां पे। और इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय हॉकी पुराने अपने सुनहरे दिनों की ओर लौटने का जो आगाज टोक्यो में हुआ था
वो जारी रहेगा। भारत के एन श्रीराम बालाजी और ऋतिक बोलपल्ली की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर टूर में पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। इटली में कल फाइनल में बालाजी और बोलपल्ली की जोड़ी ने फ्रांस के थियो एरिबेस और पुर्तगाल के फ्रांसिस्को कैबराल की जोड़ी को हराया। ऋतिक बोलपल्ली ने दूसरी बार एटीपी चैलेंजर टूर का खिताब जीता है। इससे पहले बोलपल्ली ने पिछले महीने कजाकिस्तान में अल्माटी ओपन में अर्जुन काधे के साथ खिताब जीता था। बालाजी ने पहली बार एटीपी चैलेंजर टूर का खिताब जीता है। अब चर्चा कुछ और खेल खबरों पर। उद्योग मंडल फिक्की ने भारतीय खो खो महासंघ को खेलों में उसके सराहनीय योगदान के लिए इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 से सम्मानित करने की घोषणा की है। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने आज एक बयान में कहा कि खो खो महासंघ को बेस्ट नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन 2024 चुना गया है। यह पुरस्कार 14वें ग्लोबल स्पोर्ट्स सम्मेलन के दौरान 30 नवंबर को खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल को दिया जाएगा। पूर्व चैंपियन केरल सहित मेघालय और जम्मू कश्मीर ने आज अपने मुकाबले जीतकर संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के अंतिम दौर के लिए क्वालिफाई किया। केरल ने ग्रुप एच में पुदुचेरी को 7-0 से हराकर अंतिम दौर में प्रवेश किया। 7 बार के चैंपियन ने ग्रुप में सभी मैच जीतकर 9 अंक हासिल किए। स्क्वैश में शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत सिंह ने 10वें JSW सुनील वर्मा मेमोरियल टूर्नामेंट 2024 के फाइनल में शमीना रियास को 11-4, 11-3, 11-1 से हराकर जीत हासिल की। 3 महीनों में अनाहत का यह 5वां खिताब है, जिसने भारतीय स्क्वैश में उधर बढ़ते सितारों के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया है। डेनमार्क के एंडरसन एंटोनसेन और दक्षिण कोरिया की सी यंग एन ने चीन के शेंझेन में आयोजित चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में पुरुष और महिला सिंगल्स खिताब जीत लिए हैं। और टेबल टेनिस में विश्व टेबल टेनिस फाइनल्स में आज चीन के वांग शुकिन और वांग मन्यू ने पुरुष और महिला सिंगल्स खिताब जीते। पुरुष सिंगल्स फाइनल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी वांग चुकिन ने जापान के तामाकाजू हरिमोटो को हराया। और श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, मलय जी आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने
धन्यवाद।
तमाम खेल खबरों पर चर्चा की। नमस्कार।